महाप्रभु के अंदर जो परम रसिक वैष्णव लोग, वो हम लाभार्थियों के लिए अधिक आदरणीय महाजन। वैसे भी भीष्म जी हैं, स्वयंभू
नारद
माने ब्रह्मा, शंभु शंकर जी, नारद, कपिल, कुमार, वैयासकी, बलि, ये सब लोग द्वादश महाराज जम धर्मराज। किंतु ये भारत में सवर्ण, इसके अतिरिक्त भी महाजन बहुत लाया गया, कभी हवि अंतरिक्ष की पलायन प्रबुद्ध, ये सब ये भी महाजन। किंतु उनों के रूप सनातन इत्यादि स्वरूप दामोदर राय, रामानंद जी, रूप सनातन जी, रघुनाथ जी, ये महाजन दूसरे कोटि के हैं। दूसरे मैंने ये प्रेम वाले हैं, वो लोग ज्ञान मिश्रा वाले भक्ति हैं, ज्ञानी भक्त हैं, और ये लोग प्रेमी भक्त हैं। इसलिए ये लोग हमारे निकट हैं भजन राज्य के, इसलिए इनको महाजन मान करके हम लोग ऐसे चाहिए। वो लोग कठोर वैराग्य से तत्वों को जान करके भजन करने वाले थे, हजार हजार वर्ष, लाख लाख वर्ष तपस्या की। और ये लोग बंशीधारी कृष्ण और राधा जुगल किशोर किशोरी की आराधना हरिनाम कीर्तन के द्वारा और स्मरण इत्यादि के द्वारा वृंदावन का आश्रय करके किया। कृष्ण भी वही कृष्ण, यदि द्वारका का गंध अपने शरीर में लगा लें तो उनको दूर से हम प्रणाम करेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे। जैसे इतनी निकट होने पर भी, मथुरा ब्रज से इतनी निकट होने पर भी, यहाँ पर कृष्ण वृंदावन से जब आए तो दो तीन वर्ष तक, चार वर्ष तक यहाँ थे, यहीं पर आकर के फिर गए संदीपनी यहाँ पढ़ने के लिए। उससे कितनी बार, 18 बार युद्ध किया यहाँ, कितनी बार जरा समझो,
18 बार,
एक एक वर्ष में वो तैयार होकर के आता। इसके बाद में अंतिम युद्ध में वो गए हैं वहाँ, तो ये मालूम होता है जैसे 16-17 वर्ष तक यहाँ पर थे या और अधिक, तो इतने वर्ष थे। किंतु कोई भी गोपी यहाँ नहीं आए, सखा भी आए, इसमें भी कोई उल्लेख नहीं, कोई आया ही नहीं। किसी तरह से उनको समाचार मिलता रहता, किंतु आए क्यों नहीं, इसमें कोई रहस्य है। क्योंकि मथुरा और द्वारका का उनमें गंध लग गया था। गंध क्या, कोई पूछता जे तेरे बाप का नाम क्या है तो क्या बतलाते थे, वो बतलाएंगे वसुदेव। तुम्हारी मैया का नाम क्या है, देवकी, और सब वहीं का परिचय देंगे। इसलिए भक्तों की तो बात ही क्या, कृष्ण में भी यदि वो ऐसा गंध हो तो ब्रज के जो गोपियां हैं, ब्रज के जो भक्त हैं, उनसे कोई संबंध नहीं। हाँ, उतार करेंगे, रोएंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए यही महाजन का पद, कैसा महाजन का पद, अरे छोड़ दो इनको, द्वारकावासी और मथुरावासी को। चंद्रावली जिस स्थान पर आती हैं और राधा जी के जो गण वाली राधा कुंड में रहती हैं, वहां का कोई चीज देखने से ही बिगड़ जाती है, वहां पर ईर्ष्या नहीं है, किंतु प्रेम का एक कुछ बफर भाव है। इसलिए जब वहीं के मठे को रघुनाथ दास को इतना मठा दिया, कहां से लाया, सखी स्थली से, अरे सखी स्थली से बस बिगड़ गए, मारने दौड़े तो भाग गया, वो समझ नहीं सका कि क्या बात है। ये सब महाजनों का पद, महाजनों का पद कैसा है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं सभी लोग कृष्ण की सखी होना चाहते हैं,
ब्रज की गोपी और गोपी रूप में दोनों की उपासना कर या कृष्ण के पक्ष हो, किंतु स्वरूप दामोदर जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी कहते हैं पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमे, हे श्रीमती जी मैं आपकी पाल्य दासी होनी चाहती हूँ, आपकी दासी के सिवा मैं सखी भाव आपका नहीं चाहती, वो हमारे सिर पर है सखी का भाव, इसलिए आप कृपा करें अपनी निशुल्क दासी हमको बना लीजिए, पाल्य दासी बना लीजिए, जो कुछ मुझको दे देनी मैं ले लूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी, बस यही आपका विचार है। इसलिए ये सब उल्लास रति का भाव है, कल हमने इसको कुछ थोड़ा सा बतलाया, ये इसके अतिरिक्त और कुछ, यही हमारे महाजन हैं, कौन रूप और रघुनाथ, ये हमारे महाजन हैं। इसलिए पूर्वापर कर या विचार, ये सब पूर्व और पीछे ये सब का विचार करके अच्छी तरह से इसी जीवन में अपना ध्येय यदि बना लिया जाए, हम क्या चाहते हैं ये बड़ी चीज है, केवल अपने अभाव को दूर करना, अपने विपत्ति को दूर करना, रोग का दूर करना, ये सब का, ये सब जीवन का लक्ष्य है। इस जन्म हम क्या चाहते हैं, एक ठोस एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ एक्टिव कर, हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, यही यदि ठीक हो जाए ना तो फिर वो महाजन को वो ठीक कर सकता है, ये महाजन हमारे लिए कौन है, एक आदर्श उनका निकलेगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उन लोगों के अनुगत होकर के जो भजन कर रहे हैं अभी, बस उन्हीं से संबंध रखेगा और किसी के पास में सुनने के लिए नहीं जाएगा। यह अवस्था जरा मध्यम अधिकारी में आकर के लोग होने पर कुछ ऊंची हो जाती है, ये सबके लिए नहीं, लोग तो समझ ही नहीं सकेंगे साधु किसको कहते हैं, हमारा अनुकूल साधु कौन है, प्रतिकूल साधु कौन है, ये समझ ही नहीं सकते, कुछ ऊपर जाने पर समझेंगे। साधन स्मरण लीला यह तना करा हिला काय मने करी आशुषा, साधन स्मरण लीला अर्थात कृष्ण का स्मरण करो, अपने अनुभाव के अनुकूल कृष्ण का स्मरण करो और उनके जो परिकर हैं जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है उनका, कृष्ण के जन्म का स्मरण करो, दोनों का अपने भाव के अनुकूल हो, कृष्ण अपने भाव के अनुकूल हो और जो तुम चाहते हो, जैसे आप सुबल सखा के अनुगत होकर के भजन करना चाहते हैं तो सुबल और सब जितने सखाएं हैं उन सखाओं के भावों को, अथवा यदि गोपियों के अनुगत हो तो गोपियों, वो कृष्ण और वो गोपी कैसे अनुसरण करेंगे, कैसा उनका स्मरण करेंगे, कृष्ण का एक एक रस के एक एक कृष्ण है, दास्य के अलग, सख्य के अलग, वात्सल्य के अलग और श्रृंगार के अलग, ये अलग अलग कृष्ण तो एक ही हैं, किंतु उनका रूप, उनका माधुर्य, स्वभाव, चरित्र सब कुछ बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। यहाँ पर दास्य जो, दास्य के जो कृष्ण प्रभु हैं उनका स्मरण दास कैसे करेगा, हमारे प्रभु बड़े बलवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, प्रभु है, उम्र के हैं, उनकी सेवा करेगा इस रूप में, सुंदर हैं, हाथ में वो सब गदा पद्मा अथवा वो नर है, ब्रज में तो होता नहीं, तो अभी बड़े बलवान हैं, ऐसा भाव होगा, बड़े उम्र के हैं और सखा में होगा, दोनों 5, 6, 7 वर्ष के लड़के हैं, ऐसे ही उम्र रखना पड़ेगा, कृष्ण उद्धत हैं और जो सखा के जो गुण हैं बड़े मिलनसार हैं, गले से सखा सखा मिल जाते हैं, हंसौड़ हैं, हंसी दिलगी में रहते हैं, वात्सल्य क्या क्या होगा, 5 वर्ष से छोटे के बच्चे हैं, 1 वर्ष से लेकर के छोटे उम्र से लेकर के कृष्ण बाल गोपाल सब हैं, मक्खन हाथ में है उन्हीं का ध्यान करो, यशोदा के लाल बस। और किशोर किशोरी जब होंगे, गोपियों के जब प्राण प्रियता में, उस समय उनका रूप गुण और शक्ति दूसरे तरह का होगा, इसलिए सबका एक नहीं। तो कृष्ण का भी स्मरण करो वैसे, और साथ ही साथ में उनके उस रस के जो भक्त हैं उनका स्मरण करो। यह स्मरण दो प्रकार का, एक साधन और एक सिद्ध। रूप सनातन इत्यादि को ले लो, उन्होंने साधन के लिए रूप सनातन के रूप में, रघुनाथ दास के रूप में जो साधन किया, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि का आवसान, संख्या पूर्वक नाम, उसमें किसी से रिहाई बातचीत नहीं, कोई भी बात नहीं, अपना निर्जन में बैठे हुए या अपने ठीक मन के अनुकूल बैठे हुए जो व्यक्ति हैं बस वही रहे, और लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दंडोत प्रणाम कर रहे हैं अपने भावों की सिद्धि के लिए, गिरिराज गोवर्धन की हजारों बार दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, भक्तों को प्रणाम कर, यशोदा मैया को और सबों को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी को, निद्रा हार विहार आग विजित, निद्रा को छोड़ दिया। अभी तो हम लोग अभी आरती में भी आने में अलस खाते हैं, सभी कामों में आवश्य, अभी तो घर में भी हमारी कुछ कुछ प्रति है ना, अभी हमारा प्रेम भी भक्त है। आज सवेरे किसी से बातचीत हो रहा था, हम लोग का भी प्रेम भी भक्त है, प्रेम कुछ कुछ है ना, प्रेम तो है नहीं, कुछ कुछ जो कुछ है वो भी भक्त है, कृष्ण को संपूर्ण दे नहीं सकते। गोपियों के कृष्ण केवल एकमात्र थे, उनको उन्होंने अपना सारा प्रेम जो कुछ है वो सब दे दिया, घर के प्रति प्रेम, माता पिता भाई बंधु पति जो कुछ कहो सब एकत्र कर लिया, अपने अंचल के कोने में बांध लिया, सबको उठा लिया और कृष्ण के चरणों में डाल लिया, बस एक था। हम लोगों का क्या है, अभी कुछ झाड़ू में भी ममत्व है, एक कुत्ता पाल रखा है उसमें भी थोड़ा सा ममता है, घर में नौकर चाकर है उनके प्रति भी है, पति में भी है, पुत्र में है, संपत्ति में है, रहा सहा कुछ शरीर में है, चारों तरफ में विभक्त है हमारा। कृष्ण कहते हैं यदि सबसे प्रेम निकाल लो, केवल स्त्री में भी रखो, तो कहेंगे वो भी हमको दे दो, तो एक साथ में मैं बंटवारा करके नहीं लेता, अखंड प्रेम लूंगा ने? जैसा गोपियों ने कहा, तब वो संपूर्ण रूप से देख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी शरीर में भी है, शरीर के प्रति आराम के प्रति कुछ हम लोगों का मोह है, प्रेम है, सबसे अधिक प्रेम तो उसमें है, कैसे हमको आराम मिले, प्रतिष्ठा में कुछ है शरीर के प्रति, घर के प्रति, उसके प्रति सब समय चिंता, उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, संपूर्ण रूप से उनको दे दिया प्रेम, वो अभी भक्त प्रेम लेते हैं जिसमें कोई भी नहीं सकता, ऐसा यदि करें तब तो प्रेम होगा। ये सब साधन संख्या पूर्वक नाम गांति भी कावसानी पे, तो निद्रा आहार विहार सब कुछ छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं रह गया उनसे, अभ्यास के वजह से यदि थाली आ जाए तो वो लेकर के, और जोग माया उनकी रक्षा करती है, कैसे उनकी प्रतिमूर्ति बनाकर के उनके पतियों के पास में बैठा देती है। अभी हम लोगों के लिए कृष्ण करेंगे, अरे वो जो कि साधन से सिद्ध हो गई, जिनको प्रेम मिल गया, कौन, जो मुनि ऋषिचरी थी, दंडकारण्य में 60,000 की कितने, 68,000 की कितनी थी,
60,000 दंड,
वो सब जो ऋषि लोग थे वो लोग साधन सिद्धि हो गए ना, और वहां से जाकर के जन्म लिया गोपियों के गृह में गोपी बनकर, और गोपियों को संग से कुछ पूर्व वैराग्य इत्यादि भी हो गया, माया ममता सब कुछ कट गई है, सब कुछ, तभी उनको बच्चा हुआ है, किसी किसी को कृष्ण के प्रति अनुराग है, और वो कृष्ण से मिलना भी चाहती हैं, किंतु जोगमाया ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, वो नहीं मिल सकी, ब्रज में कोई साधारण रूप में नहीं जा सकता, वहां पर जन्म नहीं होता। प्रेम की सिद्धि होने पर भवन वृंदावन में जहाँ कृष्ण की प्रकट लीला होती है वहां पर कोई गोपी के गृह में जन्म लेगा और उनको कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, जोग माया सब समय उनको हेल्प करेंगी, सहायता करेंगी, इसलिए नित्य सिद्धा गोपियों से उनका संग होगा और संग होने से कुछ भी कषाय होगा तो वो दूर हो जाएगा संग से और नित्य सिद्धा की भांति उनको भी उच्च पहुंच जाएंगी रास में, उनको कोई भी बाधा नहीं देगा, जोग माया सब समय सहायता है। किंतु इनके लिए जोगमाया ने ही ऋषिचर्य के लिए बंद कर दिया, क्यों? वो आम पका नहीं था, किंतु माली ने देखा भाई कोई दूसरा न तोड़ ले, इसलिए जब परिपक्व अभी नहीं हुआ, पका नहीं किंतु अब डस गया, अब पकने वाला है, उसमें से दो एक आम पक रहे थे किंतु और कुछ कच्चे थे, तो इसका मतलब क्या,
सब पकने वाला
और पकने वाले हैं, उनको तोड़ करके घर में रख देता है, जो जो पकता जाता है उसको खाते जाते हैं ना। ऐसे वो लोग परिपक्व अभी होकर के प्रेम उनको नहीं हुआ था, वो अभी साधन करके भाव मात्र को उन लोगों ने पाया, किंतु रामचंद्र जी जब मिले उनका रूप देख करके, कृष्ण के समान उनका रूप देख कर, हो ये तो बड़े कृष्ण जैसा हम देखते थे, बस बंसी हाथ में नहीं है और मोर मुकुट नहीं है, किंतु और बाकी जो चीजें हैं, इनके हाथ में धनुष है, बाण है, काक पीछा है, ये सब तो हैं, किंतु वेणु और वो सब नहीं, किंतु और जो रूप है बड़ा ही सम्य कृष्ण के समान है, बस एकदम उनकी भक्ति पर भाव अवस्थकता आई। रामचंद्र जी ने देखा जिसे ये मुझे कृष्ण की ही समान समझ करके और गोपी रूप से कोई स्त्री बन करके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा थे एवं अस्त, अभी तो तुम लोग पकी नहीं, पके नहीं हो, अभी कच्चे हो, अभी तुमको भाव आया, जब तक प्रेम नहीं होता तब तक इससे जाकर के उस लीला में नहीं पहुंचता जहां पर कृष्ण का जन्म इत्यादि होता है, इनको स्पेशल वो क्या कहते हैं
ग्रेस
मार्क दे दिया, दो मार्क से फेल थी, पांच मार्क से, क्यों? अभी भाव प्रेम नहीं हुआ था, उनका नंबर आना चाहिए 34 इनका 30 था, अच्छा भाई जाने दो ग्रेस मार्क दे दिया। कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक कि प्रेम की सिद्धि नहीं हो जाता तब उस लीला में नहीं पहुंचेगा, किंतु इनको रामचंद्र जी की विशेष कृपा से जोग माया को आदेश दिया, इनको वहां पर ले जाओ, वहीं पर जो कुछ पक जाएगा दो तीन दिन रहेंगी और इसके बाद में रख देंगे, बस पक जाएगा, उसमें थोड़ा सा गेहूं के या अनाज में इसको गाड़ देंगे और उसके गर्मी से ये पक जाएंगे, अर्थात नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं उनके संग से ये होंगी, उसमें इन लोगों को कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, विरह की आग से इनको थोड़ा सा सेंक देंगे तो वो जल्दी से गर्मी आकर पक जाएगा, जैसे धूप देने से कोई चीज पकती है, तो ये धूप है वो विरह, इसलिए ये उसी स्थिति में अर्थात भाव की दशा में वहां पर जो योग माया के कृपा से रामचंद्र जी के हेतु के पास से जल्दी से ही पहुंच गई, उनका भी न जाने हजारों जन्म लगता उस प्रेम की स्थिति को पाने के लिए, किंतु रामचंद्र जी ने झट योग माया के प्रभाव से उसी जन्म के बाद ही वहां पर उनका जन्म दिया, इसलिए अभी तो भी प्रेम में परिपक्व नहीं हुई थी, नित्य सिद्धाओं का कुछ संग हुआ किंतु इनकी तब तक शादी हो गई है, योग माया अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, शादी भी करवा दिया, इनमें से दो चार को बच्चे भी हो गए, इन लोगों को योग माया ने उन पतियों के द्वारा रुकवा दिया, जो नित्य सिद्धा थी या जो ये थी सूचीचरी जो थी वो प्रेम परिपक्व होने के बाद में उन्होंने जन्म लिया था, उनको सीधा उनसे संग करा करके उनको डायरेक्ट भिजवा दिया, कैसे, जोग माया ने मूर्ति तैयार की दी ठीक उन गोपियों के साथ और उनको घर में रख दिया, वो रह गए, उन्होंने पतियों ने सोचा घर वालों ने अरे हमारी बहू बड़ी अच्छी है, वही केवल बदमाश है जिनको रोक लिया, वो उनको तो देखा वही सब बदमाश है, देखो तो विवाह शादी हो गई और जा रही है कहां, और ये हमारी बहू बड़ी अच्छी है, हमारी बहू तो घर में ही है, उनको देखा और वो चली गई बिना विघ्न बाधा के। इसलिए पूर्वापर करिया विचार, ये सब पूर्व और पर का ये विचार करके साधन करेंगे, किस गोपी के हम अनुगत होंगे, कैसे हम भजन करेंगे, साधन करेंगे। पहले तो स्थूल साधन रूप सनातन जी ने इस वर्तमान शरीर से रूप सनातन रह करके महाप्रभु के परिकर रह करके कैसे साधन भजन किया, एक सेकंड के लिए कभी भगवत भक्ति से बात नहीं हुई, समय नहीं दिया मन को कि कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण की लीलाओं को छोड़ करके महाप्रभु जी की ग्रंथ इत्यादि लिख रहे हैं, भक्ति रसामी सिंधु लिख रहे हैं, उसके पहले तो भक्ति रसामी सिंधु थी नहीं लिखा, एक एक चिंतन कर रहे हैं, भाव में उनके आ रहे हैं, सुधा भक्ति के लिए लक्षण देना है, ये सब कहां से देख रहे हैं, उनके हृदय में स्फूर्ति हो रही है, आनंद से गदगद हो रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। ये समर्था समंजसा और
साधारणी
साधारण, इन तीनों को विचार कर रहे हैं, समर्था का लक्षण देंगे, कहां से देंगे, भाई भागवत की जो गोपियां हैं उन्हीं का नाम लेकर के और कहां कहां से खोज करके लाए, उस समय उनका चित्त कहां है, चिंतन कहां कर रहे हैं दिन रात उधर। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने चित्त को उसमें लगाए, एक सेकंड के लिए माया में न रहे, ये भी बड़ी बात नहीं, कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन स्मरण और इसमें यदि लगे कीर्तन इत्यादि में तब हो सकता, किंतु ऐसा होगा कैसे, यदि ऐसा समय मिले तो। इसलिए कहते हैं साधन स्मरण लीला काय मने करिया सुसा, काय के द्वारा साधन जैसे रूप सनातन इत्यादि ने साधन किया और उन लोगों ने निज सिद्ध देह करी आभामन रात्रि दिन करे राधा कृष्ण ने समान, उसका पहले क्या है, मने मने सिद्ध देह करी आभामन रात्रि दिन राधा कृष्ण करे न समान और अच्छा ये सिद्ध देह के लिए कर, हम लोगों को अभी सभी जरूरत नहीं, जगत धर्म में जहां हम पहुंचते हैं बाबा जी विजय कुमार और ब्रजनाथ को जहां पर ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं, उसके पहले जो जो उपदेश दिया है उसके अनुसार हम चले साधन भजन करें, शरीर से भी और मन के द्वारा भी, वो है भाव की सेवा मन के द्वारा, यह तेना करो हेला भाई, इसमें अवहेला मत करो, दिन रात प्रेम को पाने के लिए सचमुच में संसार सब छूट जाएगा, साधन भक्ति में छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो रह करके चल सकते हैं, किंतु जब वो होगा ना तो भाई अपने आप वो सब छूट जाएगा, कोई भी कषाय नहीं रह जाएगा। इसलिए महाजनों के पद को सुसार करो, सुसार माने सम्यक रूपे सार, असत संग सदात्याग, छाड़ो अन्न गीतरा, कर्मी ज्ञानी परिहरि दूरे, केवल भगवत संग प्रेम कथा रस रंग, लीला कथा ब्रज रस तू, असत संग सदात्याग, असत संग का सदात्याग करो, असत्संग माने क्या, अपने भाव के प्रतिकूल जितने भी भाव वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी यहां तक कि भजन करने वाले में भी किनका संग करेंगे,
स्वजातीय आशय,
अपने भाव के अनुकूल स्वजाती स्निग्ध आशय, अपने प्रति कृपालु और रसिक वैष्णव हो, भागवत के जानने वाले हो, अनुभव करने वाले व्यक्ति हो, ऐसे अभी हम लोगों को अभी जरूरत नहीं, साधारण रूप में अभी, किंतु जिनको ऐसे चीज को पाना है वो अपने मन के अनुकूल ऐसे रसिक तत्वज्ञ भावुक वैष्णव के संग में जो अपने से उन्नत हो उनका संग। जब तक अपने के उन्नत अधिक से उन्नत से नहीं संग रहेगा और अपने से कनिष्ठ का संग करेगा सब समय, उन्हीं में लगा रहेगा, तो क्या होगा? वो लोग कुछ उन्नत होकर के तुम्हारे बराबर तो हो जाएंगे, किंतु तुम्हारा एक इंच भी अधिक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उनको जहां तक संग दान करना है करो, किंतु ऊपर के स्टेप के लिए हमको अपने से उच्च अधिकारी वैष्णवों का संग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहां पर कहते हैं असत्संग त्याग जी छाड़ो अन्य गीतरा। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, यहां तक कि तत्वज्ञानी सबका धीरे 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 संग छोड़ते हुए अपने भावना के अनुकूल अपने से उन्नत रसिक अपने पर स्निग्ध, स्निग्ध माने जिनको अपना हृदय हम खोल करके विकास, ऐसा कम से कम एक वैष्णव जीवन में होना चाहिए जिसको हम अपना हृदय नहीं दिखला सकते, तो फिर उनसे हम लेंगे क्या? इसलिए ऐसा हम लोगों को कोई वैष्णव होना चाहिए, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, जिससे भी हमको छिपाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी मैया से पीछे में कहीं हो गया कोई घाव और उसे छिपाया, अपनी मैया से अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना 5-7 वर्ष का, तो उसके पेशाब के रास्ते पर कुछ घाव हो गया और मैया से बतला नहीं, किसी से बतला नहीं रहा, तो क्या होगा? बढ़ करके मरेगा तू। इसलिए मैया से, पिता से, बड़ी बहन से, भाई से ये तो दिखलाना पड़ेगा, गुरुजी से कम नहीं है ये, तो कभी सोचना नहीं कि हमने स्तर पा दिया है और अपने परिश्रम से हम स्तर पर जाए चले जाएंगे, ये कभी संभव नहीं, लेना पड़ेगा सहारा जरूर। इसलिए कह रहे हैं कर्मी ज्ञान इत्यादि को दूर से परिहर, अतथ छोड़, केवल भक्त संग, केवल भक्त माने, केवल माने विशुद्ध, विशुद्ध भक्तों का, जो प्रेमी भक्त हैं, केवल भक्त हैं, प्रेमी भक्त, उन्हीं के संग में प्रेम कथा रस रंगे। ये किस लिए कर रहे हैं? साधन भक्ति की, वैदिक भक्ति की बात नहीं कर रहे, वैदिक भक्ति इस ग्रंथ में नहीं, केवल प्रेम भक्ति की बात है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम रूपी भक्ति मार्ग का यह, ये किरण देने वाली, प्रकाश करने वाली है। तो लीला कथा ब्रज रस पूरे, ब्रज रस पूरे, ब्रज रस का पूर माने घना, ब्रज रस पूरे माने ब्रज पूर का नहीं, ये ब्रज रस कैसा है? घना पूर है, दूध है, दूध को गर्म कर दो, एक गर्म को करके धीरे 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 वो गाढ़ा होता जाए और थोड़ा सा लाल भाव आता जाए, ये जरा गाढ़ा दूध हुआ, और भी कर दिया जाए सब मलाई बन गई, ऐसा ये योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्न देवे पूजक ध्यानी इह लोक दूरे परिहर। इन सबको दूर रखो, ज्ञानी, योगी, कर्मी, हम लोग ऐसा मत समझे कि हम लोग इसे ऊपर उठ गए हैं, हम लोग इसी के अंदर में कुछ न किसी रूप में हैं, हमको शुद्ध भक्तों का संग करके क्रमशः ऊपर उठना है। इसलिए योगी, न्यासी, कर्मी, ज्ञानी, दूसरे देवताओं का जो पूजक है, जो दूसरे देवताओं की भी पूजन करती हैं, कृष्ण का भी पूजन करते हैं या करती हैं, उनको क्या किया जाए, कैसे त्याग करेंगे? परमार्थिक उनका व्यवहारिक कोई संग मत करो, एक ही घर में बेटा निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है और बाप राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, क्या करेंगे? लौकिक कोई बात है तो उनसे चित कर लो बातचीत, किंतु परमार्थिक उनसे कोई संग मत रखो, उसे दुश्मनाई और ये भी मत रखो, तो फिर चौपट हो जाएगा साधु, नहीं तो फिर घर छोड़ करके चले आओ। इसलिए अन्य देवक अन्य देवताओं का पूजन करना भी भक्ति में बाधक है, इसको भी दूर करना पड़े। एकांतिक रूप में राधा कृष्ण के शरणागत होगा, जैसे तब तो हमारे घर में कुलदेवी की पूजा होती आ रही है, दुर्गा इत्यादि की, नव दुर्गा भी आ गया, तो मैं क्या करूं? अच्छा मान लें कि तुमने पूजा नहीं किया, क्या होगा? क्या होगा? क्या क्या होगा भाई? पूजा यदि नहीं करते हैं कुल देवी की, दुर्गा की, घर में नव दुर्गा का समय आ गया तो क्या होगा?
अगर कुछ काम बिगड़ गया तो ये होगा,
काम तो बिगड़ेगा, काम तो बिगड़ेगा, तब आप तब फिर क्या करेंगे? दोनों गाल तो एक साथ में फूलेंगे नहीं, और हंसी भी होगी, हंसेंगे भी और गाल भी फूलाएंगे, ये होगा नहीं, एक मन म्यान में दो तलवार नहीं होगी। इसलिए वैसी उपाधि भक्ति को उपाधि भक्ति कहते हैं, मिश्रा भक्ति का सकाम भक्ति कहते हैं। तुम किस लिए डर रहे हो? कि इसलिए कि तुम्हारा सांसारिक वैभव नष्ट हो जाएगा, इसलिए तो डर है, यही तो अन्य अभिलाष है। यदि यही डर है तो फिर वही वही तुम अन्य देवताओं के उपासक बने, अन्य अभिलाषी भी, तुम्हारी शुद्धा भक्ति नहीं, किंतु उनके समाज समझ में नहीं आती, इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। यदि छोड़ दो तो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं योगी, न्यासी, कर्मी, ज्ञानी, अन्न पूजक, ध्यानी, ध्यान करने वाले ऐसे हैं, ए लोके, ये सब लोगों को दूरे परिहरी, दूर से प्रणाम, लौकिक श्रद्धा बस वहीं तक, और उनको अपना प्राण का बंधु समझ करके एकांतिक शुद्ध प्रेमी और अपने मन अनुकूल जो हैं उनको प्राण समझ करके उनकी सेवा। धर्म कर्म, कर्म धर्म दुख सो जेवा था के अन्य जो छाड़ी भज गिरिधारी गिरिवर धारी। कर्म तो समझते हैं कि छोड़ देना चाहिए, धर्म भी छोड़ दे, दुख कैसे छोड़े? बच्चे बच्चा बीमार हो गया, हो सकता है कि वो थे चित्रकेतु महाराज जैसा उनका लड़का मर गया, तो शोक नहीं होगा, दुख नहीं, रोएंगे नहीं, शोक कैसे छोड़ देंगे, दुख कैसे छोड़ देंगे? कोई विपत्ति आ गई क्या करेंगे, रोग आ गया क्या करेंगे, क्या होगा भाई? कहे ये करेगा तो तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, प्रेमा भक्ति नहीं होगी, अभी बहुत विलंब है। इसलिए धर्म भी, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि भी छोड़ो, कर्म की तो बात ही क्या, जो कुछ करो भगवत भक्ति के अनुकूल उसके गाइडेंस में करो, सब कुछ करो किंतु कृष्ण के लिए करो, वर्णाश्रम धर्म में अपने सुख के लिए मत करो। मैं भगवान की उपासना करता हूं, राधा कृष्ण की उपासना करता हूं, किस लिए करते हो भाई? इसलिए कि हमारी स्त्री बाल बच्चे धन संपत्ति सुरक्षित रहे। तो ये क्या हुआ, भक्ति हुई कि नहीं हुई? कृष्ण की खूब उपासना करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तुलसी का 108 पत्र ले लिया या 1008 रख दिया, एक एक बार प्रणाम करके उसको करते जाते हैं, और फिर उसको सबको लेकर के मिश्री और ये सब लेकर के, किस लिए इतना परिश्रम, किस लिए हो रहा है? हमारे बाल बच्चे संसार सब ठीक रहे। यदि संत कहेंगे भाई इसके लिए मत करो गड़बड़ हो जाएगा, तो कहेंगे जब यही नहीं रहा था तो फिर भक्ति क्या रही, उनके समझ में नहीं आती, वो बहुत दूर की बात। इसलिए हम लोगों को भी कोई दुख हो तो ये समझो जो कृष्ण की कृपा से ये दुख मिल रहा है, भगवान हमारी नासूर को ठीक कर रहे हैं, अब इसके बाद में हमारे अच्छे दिन वाले आने वाले हैं, शुद्धा भक्ति होगी। भाई तुमको कौन देखेगा, मरेगा जिस समय में कोई विपत्ति आएगी तो मठ वाले कोई देखेंगे, देखेंगे कि नहीं। अरे अभी तो 5 पैसा मांगने में नहीं देते, हमने तेल मांगा किसी मठ के रक्षक से, उन्होंने हमको 2 आने पैसे दे दिए, जाओ 20 पैसे दे दिए, ये जाओ। जो जिनसे 1 पौवा तेल के लिए 200 ग्राम तेल के लिए पैसा नहीं निकलता, भविष्यत में वो क्या हमारी देखरेख करेंगे? इसलिए लोगों के साथ में रहेंगे न जाने क्या। अरे तुम किसका भजन करने आए हो, कृष्ण के लिए नहीं निका, ये तो ज्ञान विचार नहीं करते। अरे हम कृष्ण का भजन करने आए तो कृष्ण तो देखने वाला है, समस्त व्यवस्था करना है तो कृष्ण पर भरोसा करो, इन पर भरोसा मत करो, तुम कृष्ण पर तो भरोसा करना सीखो। ऐसे ही कोई गृहस्थ में रहे, त्यागी में रहे, कृष्ण पर भरोसा करना सीखो। कृष्ण माए पाले राशि जानो सब, कृष्ण जरूर हमारी सेवा रक्षा करते हैं, उन पर विश्वास रखो। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, शोक से ग्रस्त मत हो जाओ। इसलिए कहते हैं ये धर्म कर्म दुख शोक और अन्य जो बातें हैं वो सब को छोड़, छोड़ करके क्या होता है,
निष्किंचन,
निष्किंचन अकिंचन, और है सब कुछ। नरहरि प्रभु थे प्रभुपाद के शिष्य, उनके हाथ में मठ की चाबी रहती थी, समस्त भारतवर्ष में बाहर में प्रभुपाद जी के मठ थे, तो उनके पास में कुछ पैसे भी आते जाते हैं, जैसे हम लोगों के पास में आते हैं, उनके पास में तो और आना चाहिए, आता तो चाबी उनके पास, और लोगों को 1000-1000 रुपया प्रभुपाद जी के आश्रय से देते थे, लेते थे, जमा करते थे, खर्च करते थे। तो उनके एक भतीजे आए, घर से छोड़ करके भाग आए, जो हम साधु बने, भाग तो आए किंतु वृत्ति तो अभी थी नहीं, तो 2-5 दिन रहे, तो फिर उन्होंने भी समझा दिया, दूसरों ने समझा दिया, फिर वो घर लौट जाएंगे। उनके नाते सबको उनको आदर करते थे, तो उन्होंने सोचा चाची तब मैं उधर से तो किराया दे करके किसी प्रकार से भाग करके यहाँ पर चला आया, और हमारे काका जो हैं ये मठ के इंचार्ज हैं, और उनके पास में हजारों लाखों रुपये आते हैं और जाते हैं, तो जाने के समय में उनको किराया तो दे ही देंगे, इसलिए वो निश्चिंत थे। कहा जैसे जाओ, तो वो खड़े रहे, भाई कुछ किराया तो देंगे, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं और कुछ पूछा भी नहीं, ये कैसे जाएगा, हाथ सिर पर रख करके बड़े प्रेम से सहला बिला करके बेटा तू जा। अब वो तो देखा जी अब जाएं कैसे, सोचे जी अभी निकाल करके देंगे, अब तो उन्होंने निकाला ही कुछ नहीं। तो जब थोड़ी देर खड़े रह गए तो वैष्णव लोग तो बड़े चतुर होते हैं, बूझ गए तुम जा नहीं रहा, तो तू ये समझता है कि हमारे पास लाखों रुपये आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं इनमें से लेकर के देखूँ, ये हमारा 1 पैसा भी नहीं, यदि मैं दूंगा तुमको तो 1 पैसा चोरी का हुआ तो मैं कृष्ण के और गुरु जी के यहाँ क्या मुख दिखलाऊंगा, वो तुमने तो था हमारे पास में रखा है, मैंने तो कमाया नहीं ये सब पैसा, बेटा ऐसा मत समझ। इतने में किसी प्रकार से प्रभुपाद को खबर लगी, इसका भाई आया भतीजा आया है और वो जा रहा है, पैसा नहीं है ने? इतने में झटो आ गए, ए नरहरि इसको जाने का किराया दे देना, तो आदेश दिया। तो जब हो गया आदेश तो उन्होंने मिशन से निकल करके जितनी किराया थे ठीक उतना ही दिया, कितना किराया है भाई, अब ऊपर से आ गया है हुकुम, बस उनको दे दिया। अब वही व्यक्ति जब हमारे गुरु जी के संग में रहे कुछ दिन आकर के फुट फुट करके रोते थे, हमारे चाचा जी इतने बड़े निष्प्रिय और इतने बड़े भक्त थे, हमारे प्रति भी तनिक भी ममता नहीं रही, सबको छोड़ दिया सचमुच में कृष्ण के लिए। ऐसी ममता यदि हम लोगों में हो तब तो ये ऐसी भक्ति होगी, अन्यथा यदि ऐसी नहीं रही ना ममता कहीं भी लगी रही तो सोचो जी वो भक्ति होना बड़ी कठिन है। इसलिए मान लिया कि हमारा घर से भाई आ गया, भतीजा आ गया, हमारा कोई आ गया दूसरा, अच्छा उससे मैं बातचीत बात करता हूं, क्या बातचीत करूंगा बतलाओ, तो भक्ति की बात करूंगा, कहूंगा जब भैया कैसा है भाई, हमारे घर में माता जी ठीक है, वो खेत ठीक है, यही तो कहूंगा, या आप लोग घर की बातें करेंगे तो वो क्या कहेगा, बात भक्ति की बात सुनेगा, इसलिए वो कर्मी का संग होगा। इसलिए हमारे लोग पूर्व हमारे जो वैष्णव थे महाजन लोग इस प्रकार से चलते थे, एक प्यासे कृषक को भी पानी यदि पिला तो घर जाओ, उपकार की भावना है, भक्ति की भावना से भी बहुत दूर, बहुत ही एक दुर्लभ चीज है भाई, ये साधारण लोगों के दिमाग में नहीं आए, जिनको शुद्ध वैष्णवों का संग हुआ है वो नहीं समझेंगे, इसलिए सब समय उन्हीं के बातों में रहेंगे तो वो संसार की बात करेंगे, हमारा अधिकार भी नीचे चला जाएगा। इसलिए ऐसा करना है, कोई डूब रहा है पानी में, रस्सी फेंक दो, खुद मत उतरो, कोई रस्सी नहीं, अपना गमछा कपड़ा लत्ता नंगे हो जाओ और उसमें से अपनी धोती खोल लो और लंबा करके फेंक दो, यदि वो पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, और बहुत दूर है तो धोती फेंकने से जाएगा, तो हल्ला मचाओ, लोग आकर के उसको निकाल देंगे, ना उतर, तुम यदि कूद गया और तैरना नहीं जानता तो क्या करेगा, डूब मरेगा तुम, और कपड़ा फेंक दो यदि पकड़ करके आ जाए तो ठीक है, डूबेगा कपड़ा, और यदि गड़बड़ करेंगे तो कपड़ा छोड़ देंगे। इस तरह से अभी साधु संघ में अभी चलना पड़ेगा हम लोगों को, और यदि अधिक प्रयास किया तो बस उन्हीं के विचारों में वो त्रुत होकर के अपने उस विचारों से डिविशिएट हो जाएंगे, लिखो सावधानी के साथ में कृपा करेंगे, हिरण पर जैसे भरत जी ने कृपा करी वैसा कृपा करने की चेष्टा मत करो, हिरण बड़ा हो जाएगा, ये भजन कराएंगे इस हिरण से, उसे कहेंगे हाँ जोड़ तो, वो हिरण दोनों पैर आगे काले करके ऐसे, देखो हमारा हिरण कैसा प्यारा ये प्रणाम कर रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल, तो वो देख रहा है हाँ ये तो कृष्ण कृष्ण बोल रही है हिरण, ऐसे ही सब गड़बड़ हो जाएगा, खूब सावधानी के साथ में चलना चाहिए। छाड़ी भजो गिरिधारी, गिरिधारी का भजन करो, कौन गिरिधारी, वो गिरिधारी गिरि को धारण कर सकते हैं, तुम हम जो गिरिधारी नहीं धारण कर सकता उनका भजन मत करो, राधा जी भी गिरि को धारण कर सकते हैं, कृष्ण को भी, संसार की समस्त चीजों को, इसलिए ऐसे जो राधा कृष्ण है उनमें अविभक्त हो संपूर्ण प्रेम उनके चरणों में दो, कहीं भी इधर ऐसे मत देखो, ऐसे भी मत देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे मत, और आंख सीधी है और कान की कोने आंख की कोने से ऐसा भी मत देखो, यदि देखा माया खींच लेगी, माने क्या, इधर उधर की चीज कोई चीज मत देखो, यदि देखा माया तटस्था शक्ति में हम खींच लेगी, सीधा देखो कृष्ण की तरफ, गुरु के चरण में, वैष्णव के चरण में, इन शास्त्रों के देखो, इधर उधर मत देखो, इसलिए हम लोगों की गड़बड़ी होती है, थोड़ा सा इधर देखते हैं ना, अरे वो गिर रहा है, वो किसी से प्रेम कर रहा है या कर रही है, हमको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, वो झूठ बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या ले गया, अरे वो भजन नहीं करता तुम्हें क्या हो गया, तुम अपना भजन करो, दूसरे को देखो मत, वो देखने वाले गुरु और वैष्णव लोग हैं जो बहुत उन्नत है, वो लोग देखेंगे, हम लोगों को भजन करना है, सीधी रूप में चलना है, छाड़ी भजो गिरि गिरिवरधारी, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने रखना, सर्व सिद्धि गोविंद चरण, वैष्णव के चरणों में ही सब सिद्धि है, गोविंद के चरणों में सब सिद्धियां हैं, तीर्थ जाता परिश्रम, हम लोग तीर्थ करते हैं, तीर्थ माने कुछ हो जाएगा भाई, अभी अभी मान लिया कि कोई जा रहे हैं ना आसपास के 5-7 आदमी बद्री नारायण द्वारका जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई अभी नवदीप जाएंगे, बस मन में ऊकी मुखी चल रही, बिना जा रहा ना जब महाराज मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, किस लिए जाएगा, जाएगा किस लिए, महाराज जी बड़ी भारी परिक्रमा होती है, बड़ा भारी उत्सव। अच्छा तो तुम जा करके क्या, मैं परिवेशन कर लूंगा और क्या करेगा, कहां कहां से भक्त आए उनसे 2-4 बात करूंगा, किस लिए तुम जाएगा बतलाओ। अच्छा जब परिक्रमा नहीं होती तब भी जाओ, भजन की स्पृहा यदि रहे तब तो तीर्थ यात्रा और धाम के लिए सेवा के लिए जाना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण, गोविंद जी की सेवा में, गोविंद जी के चिंतन में, उनके कीर्तन में, वैष्णव की सेवा में, यह सब जो आदेश देते हैं सेवा के लिए तो करो। तीर्थ क्या कोई भी जगह हो, वैष्णव का आदेश है जाओ वहां पर भगवत भक्ति का प्रचार करना है, ये करना है। कहां जाए प्रभु, तो गया में जाओ, ठीक प्रभुपाद ने आदेश दिया, ठीक है मैं जाऊं, चले गए। माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी पाद को कहा गया में जाओ वहीं रहो, गया सबसे एक निम्न स्थान साध्य इत्यादि का जो वहीं पर आकर के रहे, महाप्रभु जी से भेंट हो गई। इसलिए गुरु वैष्णव आदेश देते हैं जहां जाने के लिए वही तीर्थ है, वही सेवा में हम लोगों को नियुक्त होना चाहिए। अपने मन से हमको याद नहीं है कि जीवन में मैं कभी भी किसी भी तीर्थ में जाने के लिए कभी भी कल्पना की। गुरु जी ने कहा जैसा सुनो वहां चलना है, ऐसे ही होना चाहिए, भजन से हमको जरूरत है। जब इंद्र